सुलेमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल जवाब की बराह रास्त नशिस्त को लेकर एक बार फिर दिल्ली असेंबली का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत हूँ। आगाज़ करते हैं आपसे, शुक्रिया आपके वक्त का। आप सब मौजूदा दौर की जो बड़ी फतूहात करार दिया जाता है जिन अवामिर को, उनमें से एक सोशल मीडिया है, इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज़ादी राय और इजहार राय की आज़ादी। कहते हैं ये एज ऑफ रीजनिंग है, एज ऑफ लिबर्टी है, एज ऑफ फ्रीडम है, आप जो चाहें लिखें। तालीम का फ़रोग हुआ है, बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ तश्कील पाई हैं, उसका नतीजा ये है कि आवाम में शऊर पैदा हुआ है। हम ये देखते हैं कि हर सतह पे अगर कहीं कोई खिलाफवर्जी होती है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाने के जदीद मीडियम्स भी इतने फ़ाल और इतने सुबक रफ्तार हो चुके हैं कि लम्हों के अंदर तब्दीली वाकई हो जाती है। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शऊर लोगों में आया है, बिलुमूम तासुर यही है और उसी का इजहार हमने पाकिस्तान में हालिया कुछ सालों में भी देखा। आपका क्या तज्ज़िया है? क्या पाकिस्तानी आवाम में शऊर पैदा होता हुआ आपको नज़र आता है? जो कुछ मामला पहले थे अवामी सतह पे, उसके अंदर बेहतरी आई है?
मेरे नज़दीक शऊर को पहले समझना चाहिए वो है क्या चीज़। शऊर का मतलब ये है कि मेरा रद्द अमल, मेरा इजहार राय, मेरा किसी चीज़ को देखना, उसमें कोई जाविया नज़र इख्तियार करना, अब ये इल्मो इस्तदलाल पर मबनी होगा। शऊर इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैंने कुछ हकायक पहले नहीं समझे हुए थे, अब मैंने समझ लिए। असल चीज़ ये है कि उसके समझने का अमल कैसे हुआ है। क्या वो इल्मो इस्तदलाल की बुनियाद पर हुआ है, यानी मैंने फिलवाक़े चीज़ों का तज्ज़िया करना सीख लिया है, मैंने उनको सही जगह पर रख कर देखना सीख लिया है, मैंने उनके माजी हाल को उस रब्त के साथ समझना सीख लिया है जिसके साथ चीज़ों को समझना चाहिए। ये शऊर है, ये इल्म में पैदा हो, ये मज़हब में पैदा हो, ये फ़लसफ़े में पैदा हो, ये इंसान के सियासी और समाजी फ़ैसलों में पैदा हो, ये बड़ी नेमत है। इसलिए कि यही शऊर है जो इंसानियत का शरफ़ है। अल्लाह के पैगंबर यही शऊर पैदा करने के लिए आते हैं। जब हम कहते हैं कि वो आकर मनादी करते हैं कि तुम ये बात समझने की सही करो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है, तुम्हें अगर इल्म व अक्ल से नवाजा गया है तो इसमें क्या चीज़ पेश नज़र है। इन सब चीज़ों को उनके सही रब से समझ लिया जाता है तो इस कायनात की और इंसान की सही मार्फत पैदा हो जाती है। जब सही मार्फत पैदा हो जाती है तो रवाबित और ताल्लुकात को उनकी जगह रखना मुमकिन हो जाता है। तो शऊर के लफ्ज़ को पहले देखना चाहिए, उसका मतलब क्या है। अगर तो ये शऊर पैदा हुआ है तो फिर इसका ज़हूर होगा एक ख़ास तरीके से। वो ज़हूर इंसान को कायम बिलकिस्त कर देता है, यानी फिर वो ज़हूर जज्बात के इजहार की सूरत में नहीं होता, वो प्रोपेगंडे की सूरत में नहीं होता, वो बातों को अपना रंग देने की सूरत में नहीं होता, वो फिर इंसान को उस जगह खड़ा करता है जिस जगह अल्लाह की किताब खड़ा करती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त, यानी वो फिर हक का, सच्चाई का गवाह बन जाता है। उसका बड़ा सादा इम्तहान वही है जो खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। ये बताया है कि ये देखो कि तुम्हारी क्या सिर्फ ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे लिए पूरा तोला जाए, या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम पूरा तोल कर दो। तो अगर तो ये ख्वाहिश है कि मेरे लिए पूरा तोला जाए, मेरे रहनुमा, मेरे लीडर, मेरा फ़िक्र, मेरा इल्म, मेरे मुतालबात, इनके मामले में तो हर शख्स सही जगह पर खड़ा होता है। नहीं, इसके मुकाबिल में जब कुछ देने की नौबत आ जाए, जब तुम्हें अपना जायज़ा लेना पड़े, जब तुम्हें अपनी मोहब्बत का तजिया करना पड़ जाए, उस वक्त देखो कि तुम सच्चाई की बात करते हो, उस वक्त भी इतने ही बेदार होते हो, उस वक्त भी तुम्हारा इस्तराब यही होता है, और उस वक्त भी शदीद ख्वाहिश होती है कि मैं तोल रहा हूँ। तोल रहे होते हैं ना हम असल में, जो कुछ दे रहे होते हैं, मैं तोल रहा हूँ तो कहीं इसमें कोई छटाक भर, कहीं माशा भर कमी ना रह जाए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दे दूँ। तो अगर तो ये सूरत हाल है तो वाकई शऊर पैदा हुआ है, वरना वही चीज़ है कि लेने के बाट और हैं, देने के बाट और हैं। तो हमारे यहाँ लोग गौगा को शऊर से ताबीर करते हैं, ये तो एक शैतानी चीज़ है, इसकी क्या हकीकत है?
ठीक। अच्छा आप सर, मैंने गुज़श्ता दिनों एक साहिब का तबसरा ये सुना, जब उनसे पूछा गया कि हमारी कौम में बहुत शऊर नज़र आता है, हम देखते हैं हर जगह लोग बहुत चार्ज्ड हैं अपने हुकूक के लिए, जैसे उनको किसी सियासतदान पे, किसी ज़हीन पे, किसी लीडर पे कोई एतराज़ होता है तो पलट के जो है ना उसका एहतसाब शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में फरमाया कि यही काम अगर वो अपने महबूब लीडर के हक़ में करें तब शऊर होगा। भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो आपकी अपनी पसंद है, जो आपके अपने कायम शुदा तसव्वुरात हैं, जो आपकी पार्टी, आपका फ़िरका, आपका मसलक, आपके आइडल्स हैं, उनके बारे में तो तौजीहात हो रही होती हैं, उनकी हर तरह की जिसको आप कहते हैं बदखलाकी की भी एक कानूनी जस्टिफिकेशन तराश ली जाती है, लेकिन जो गैर लोग हैं उनके ऊपर तनकीद बड़े ज़ोर शोर से हो रही होती है। आपको इसमें कोई तब्दीली नज़र आई पाकिस्तान में, ये सिलसिला जिस तरह से पहले था और हमारा ख़ुद बरसग़ीर का पस मंज़र, ये वैसे ही जारी है?
बिल्कुल उसी तरह जारी है, कोई अदना दर्जे तब्दीली नहीं आई। तब्दीली तो तब होती जब के लोगों के दरमियान हकीकत का शऊर पैदा होता, तजिया गैर जानबदाराना होना शुरू हो जाता, लोग किसी बदअखलाकी पर, किसी कानून शिकनी पर, किसी हदूद से तजावुज़ पर अपने रहनुमाओं, अपने दानश्वरों, अपने सियासतदानों और अपने उलमा पर भी उसी तरह तनकीद कर रहे होते जिस तरह वो दूसरों पर तनकीद करते हैं। अगर ये चीज़ पैदा हो जाए तो फिर तो क्या कहने। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि मुझे जिस दीन ने शनाख्त दी है, मैं मुसलमान हूँ, उसने तो मेरे ईमान का सबसे बड़ा तकाजा यही बयान किया है कि मैं कायम बिलकिस्त तो कर रहा हूँ। मेरा कायम बिलकिस्त होना ही असल में मेरे शऊर का इजहार है। जिस वक्त मैं इंसाफ की बात से नहीं चूकता, यानी मुझे मालूम है कि ये मेरे उस्ताद की राय है लेकिन गलत है, गलत है तो गलत है, ये मेरे रहनुमा की राय है, ये उसका तर्ज अमल है लेकिन मुझ पर वाज़े हो गया कि ये गलत है, फिर ये गलत है, गलत गलत है और सही सही है। अगर तो ये चीज़ पैदा हो गई है और इंसान शाइस्तगी के साथ, तहजीब के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान करता है, अपना इस्तदलाल पेश करता है, तो यकीनन शऊर पैदा हुआ है। लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तो लोग पहले ही बड़े उज़र तराशते हैं, और अपने रहनुमाओं के लिए तो पहले ही उनके यहाँ बड़ा शऊर होता है, और अपने मफादात के मामले में तो मैंने आज तक किसी को बेशऊर देखा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर शऊर कहीं गायब हुआ होता है, शऊर पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है, लेकिन जिस वक्त आप उसकी तहजीब करते हैं तो वह कायम बिलकिस्त हो जाता है, उसको शऊर कहते हैं। अगर वो कायम बिलकिस्त नहीं हुआ तो वो एक जज्बात का उमड़ता हुआ तूफ़ान है, वो ज़ाहिर है कभी इधर बह निकलेगा, कभी उधर बह निकलेगा, फिर उसकी ना कोई समत होती है ना उसके कोई नतायज होते हैं। उससे कोई बड़ी तखरीब हो जाए तो हो जाए, उससे कौमों की या अफराद की तामीर का काम नहीं लिया जा सकता।
बिल्कुल वाज़ह हो गया। अच्छा हम सब ये बयान फरमाइएगा कि अगर आदमी अपने आप को इतना रीजनिंग पे खड़ा कर लेता है कि हर जगह कायम बिलकिस्त है, इस्तदलाल का जायज़ा लेगा, चाहे अपनी महबूब शख्सियत की तरफ से आए या किसी मुखालिफ की तरफ से आए, तो फिर यूनिटी कैसे बनेगी, जथा कैसे बनेगा, मसलन कोई इदारा कैसे फ़ाल होगा, कोई सियासी जमात कैसे जुड़ेगी, क्योंकि उसमें तो नज़रियात का बहाव है जो लोगों को यकजहत कर देता है किसी एक मुश्तरक मकसद के ऊपर। अगर सब लोग इसी तरीके से जायज़ा ले रहे हों तो फिर तो ना कुछ ऐसी पार्टी बन सकती है, इसलिए कि वो पार्टी में हर आदमी कहेगा जी मेरी राय तो ये है, इस मामले में ऐसा होना चाहिए, इस्तदलाल की जो है वो गुत्थियाँ सुलझाएगा, तो उससे कोई तंजीम तो आगे नहीं बढ़ सकती। फिर
क्यों नहीं बढ़ सकती? इसका नतीजा तो आप ये बता रहे हैं कि फिर रियासत भी जमहूरी उसूलों पर नहीं बन सकती, फिर अदालतों में भी फैसले नहीं हो सकते। उन सब में क्या यही जज्बाती फ़ज़ा पैदा की जाती है? लोगों को इसका एहसास दिलाना चाहिए कि हकीकी ताल्लुक़ इल्म व इस्तदलाल से पैदा होता है, वो फिर हकीकी ताल्लुक़ होता है। उसमें रहनुमा भी वो उलमा है, वो सियासतदान है, वो दानश्वर है, वो मुतनब्बे रहते हैं। मैंने बारहा ये अर्ज़ किया है कि जिस वक्त आपको अपने रहनुमाओं के बारे में कोई फ़ैसला करना है, रहनुमाओं के बारे में फ़ैसला तो करना पड़ता है। आदमी अपने लिए किसी भी इल्म में किसी उस्ताद का इंतखाब करता है, वो किसी दानश्वर के बारे में ये ख्याल करता है कि ये मुझे ज़िंदगी के हकायक का बेहतर तजिया करके दे देगा। ऐसे ही सियासी रहनुमा है, लीडर है। तो ये इंसान जब ये फ़ैसला कर रहा होता है तो सवाल ये उसने क्या चीज़ें पेश नज़र रखी हैं। सबसे पहली चीज़ जो दुनिया के किसी भी मामले में राय कायम करते वक्त सामने रखनी चाहिए वो ज़ाबता अखलाक की पाबंदी है। यानी क्या मेरा लीडर, मेरा रहनुमा, जिस आलिम को मैं पसंद करता हूँ, जिस दानश्वर की तहरीरें मैं पढ़ता हूँ, क्या वो ज़ाबता अखलाक की पाबंदी करता है? यानी झूठ बोलता है, फरेब देता है, मेरे जज्बात का इस्तेमाल करता है, कभी मज़हब को, कभी लसानी एहसास को, कभी कौमी तफाखुर को, कभी किसी चीज़ को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करता है, या वह मेरी रहनुमाई करता है, हर कदम पर मुझे बताता है कि सही चीज़ क्या है, मेरे अंदर सही और गलत का शऊर पैदा करता है। वो फांसी के तख्ते पर भी खड़ा होकर कभी झूठ बोल के कोई मकसद हासिल नहीं करता, बल्कि सच्चाई और आखिरी दर्जे की सच्चाई बताने की सही करता है। और अगर कौम की, मुल्क की या किसी दीनी तसव्वुर की तनकी करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखता है कि ये तनकी वो किन जज्बात के साथ कर रहा है। ज़ाबता अखलाक, आप जानते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट या एक प्रोफेशनल एथिक्स है जिसका हम बाकी ज़िंदगी में हमेशा लिहाज रखते हैं, ये सबसे बढ़कर और सबसे पहले अपने लीडरों में देखनी चाहिए। अगर कोई आलिम है और वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते वक्त दो लम्हे का तवक्कुफ़ ही नहीं करता, दूसरे की राय बयान करते वक्त डंडी मार देता है, वो आपके सामने एक उस्ताद की तरह आकर आपको समझाता नहीं है कि दूसरे की राय को उसकी जगह रख कर देखिए वो है क्या, और फिर तनकीद करके बताता है, अगर वो ऐसा नहीं करता बल्कि प्रोपेगंडे के तरीके बयान करता है, वो प्रोपेगंडा करने की तरबियत देता है, वो चीज़ों को अफराद के हवाले से देखने ही का जज्बा पैदा करता है, तो क्या फिर उस कहा जा सकता है कि ये कोई आलिम है? इसी तरह अगर कोई सियासी रहनुमा है, कौम के साथ झूठ बोलता है, झूठ की बुनियाद पर अपनी मुहिम चलाता है, झूठ ही की बुनियाद पर लोगों को अपनी जानिब मतवज्जे करता है, रोज़ देखता है कि कौन सी चीज़ मैं अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कानून शिकनी करता है, कानून ज़ाब्ता जिसका वो खुद पाबंद होना चाहिए सबसे बढ़कर उसको तोड़ने वाला बन जाता है, इसके मानी ये है कि वो दर हकीकत इंसानियत के बुनियादी शरफ़ से महरूम है। ये चीज़ देखने के बाद फिर देखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए मैं किसी रहनुमा का इंतखाब कर रहा हूँ, वो आलिम है, दानश्वर है, सियासतदान है, उसकी अहलियत भी है या नहीं उसमें, यानी इस मनसब की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। आलिम के मनसब पर बैठा है तो क्या इसका अहल है कि मैं इससे दीन सीखूँ? सियासत के मनसब पर है तो क्या मैं इसके बारे में एतमाद कर सकता हूँ कि ये मेरे मुल्क को या मेरी कौम को सही समत में ले जा सकता है, ये नज़म हुकूमत को चला सकता है? देखा जाएगा ना ये सब। और तीसरी चीज़ ये, करना क्या चाहता है, मकासद क्या है, बीन क्या है? रह कि हर चीज़ के कुछ मकासद भी होते हैं और उसका एक जाविया नज़र भी होता है जिसको सामने रख कर कोई आलिम आपको किसी चीज़ की तरगीब देता है, कोई सियासतदान, कोई दानश्वर। तो ये तीनों चीज़ें जब तक आप सही तवाज़ुन के साथ देख कर फैसला नहीं करते उस वक्त तक ये कोई शऊर नहीं होता, बल्कि वही शोर व गौगा होता है जिसमें बहाल ले जाने के लिए इंसान बेताब रहते हैं। और बस उसके लिए फिर लोगों के पास वही बात है कि बड़े उज़र होते हैं तराशने के लिए और बहुत बहाने होते हैं पेश कर देने के लिए, वरना दो लम्हों में इम्तहान हो जाता है कि वो अपने मुखालिफीन के बारे में हक बात कहने की हिम्मत रखते हैं। यानी इसी को कुरान ने बयान किया है ना, ला यजरमन्नकुम शनान कौम नला अल्ला तादिलु ए दिलु हवा अकरबु लित्तक्वा, तुम्हें किसी की दुश्मनी बेस पर ना उभारे कि तुम कोई बेइंसाफी की बात कह दो। तो सवाल ये है कि इंसाफ की बात अगर आप दुश्मन के मुकाबले में नहीं कह सके तो फिर अगर आपने अपनों के लिए इंसाफ इंसाफ की पुकार बुलंद कर ली है तो ये कौन सा शऊर है? ये तो असल में जबिल्लत इंसानी का इजहार।
बहुत अहम बात फरमाई हम सब। अच्छा, हमारे शऊर की सतह इस बात से भी मुलाहिज़ा होगा हम सब, कहा ही जाता है कि एंड जस्टिफाई मीन्स, यानी मकासद का हुसूल है उसके लिए जो कुछ किया गया है, जो कुछ किया गया है उसको उसकी रोशनी में देखें कि हासिल क्या हुआ है, नियत क्या थी बंदे का, इरादा क्या था। क्या एंड जस्टिफाई मीन्स का कोई तसव्वुर इस्लाम में है कि आप अच्छी नियत से कोई गलत तरीका अपना लेते हैं, या मिसाल के तौर पर आपसे गलती आप कर देते हैं या जानबूझ के कर देते हैं एक तदरीज स्ट्रेटजी के तौर पे ताकि आप अच्छे मकसद की तरफ पहुँचें, लेकिन नतीजा तो अच्छा निकल आता है ना फिर?
ये तो शैतानी रास्ता है, ये सिर्फ शैतान ये तरीका सुझाता है हमेशा, जब भी उसको को अपना काम लेना होता है वो यही तरीका सुझाता है।
अजीब, अच्छा,
उसके लिए रास्ता ही यही है, इसके बगैर वो एक कदम भी आपको अपने रास्ते पर चला नहीं सकता,
पहले दिल में
वो सबसे पहली तरगीब यही देगा, सबसे पहला नज़्म यही पैदा करेगा, सबसे पहले आपको इसी पर कायल करेगा कि असल चीज़ जो है वो नतीजा है नहीं, असल चीज़ रास्ता है, सिरात मुस्तकीम पर चलना है आपको। इसी की दुआ करते हैं हम शब व रोज़ 5 नमाज़ों में, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह होनी चाहिए, सीधी राह इंसाफ की राह है, सच्चाई की राह है, सीधी राह धोखे की और फरेब की राह नहीं हो सकती। जब आप गलत तरीके इख्तियार करेंगे तो गलत तरीके का मतलब समझते हैं, उसका मतलब ही होता है कि आप अपने अखलाकी वजूद की कुर्बानी देंगे। तो जबिल्लतों में और इंसान के अखलाकी शऊर में जो तसादुम है, यही इम्तहान है जिसमें हमें डाला गया है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो किसी आलिम, किसी दानिश्वर, किसी सियासतदान को सबसे पहले उसके शोबे से मुतल्लक ज़ाबता अखलाक पर जांच कर देखूंगा, वो उस पर पूरा उतरता है तो मैं आगे तवज्जो करूंगा, उस पर पूरा नहीं उतरता तो मेरी तरफ से आसमान के तारे कल तोड़ के ला के दिखा दे, वो मेरे नज़दीक परेका की हैसियत भी नहीं रखता।
बहुत ही अहम नुक्ता है। अच्छा खान साहब, अमरुहम शूरा बैनहुम की हम बात करते हैं कि मुसलमान अपना नज़्म इज्तमाई मशवरे पर मुश्तमिल रखेंगे, तमाम लोग उसमें बराबर की जगह पर मशवरा देते हैं। अब आवाम की अक्सरियत जो है अपने वोट के ज़रिए अपनी राय अपने मशवरे से एक फ़ैसला करती है और हम उसके बारे में कहते हैं कि यार ये फ़ैसला तो उनकी बेशौरी पर मबनी है, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद आवाम की वो बेशौरी पर मबनी फ़ैसला कर सके। हमें नज़र आता है इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े मार्के हैं, पूरी की पूरी आवाम एक तरफ खड़ी होती है लेकिन जब हम तजिया करते हैं उसका तो वो तजिया इस्तदलाल की बुनियाद पर पूरा नहीं उतरता। तो क्या ये भी मुमकिन है कि इंसानों की अक्सरियत बेशौरी का फैसला कर दे?
इसमें क्या शक है, इंसानों की अक्सरियत ने हमेशा बेशौरी के फैसले किए,
अच्छा
मज़हब के मामले में किए हैं, हज़ारों साल तक किए हैं। इंसानों की अक्सरियत के बारे में कभी भी ये हुस्न ज़न नहीं रखना चाहिए कि वो बहुत ठीक फैसला करती है। ये जमहूरियत फसल रज़ा का तरीका है, यानी चूंकि इंसानों पर हुकूमत करनी है, इंसानों के लिए हुकूमत होनी है, तो ये फ़ैसला उन्हीं को करना है, उनके फ़ैसले में इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, इख्तलाफ हो जाता है। भाई मुझे एक शख्स पसंद है, आपको एक दूसरा शख्स पसंद है, मैं एक आदमी को समझता हूँ वो मेरी बेहतर रहनुमाई करेगा, आप समझते हैं दूसरा आदमी करेगा, इसमें अब फैसला करना है। तो फैसला या पानीपत के मैदान में होगा या फिर लोगों की राय से हो जाएगा। तो हमें अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है कि लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला कर लिया जाए, वो गलत होगा, सरासर गलत होगा, इसके बावजूद भी कर लिया जाए और मान लिया जाए। उसको दुरुस्त करने का तरीका ये नहीं है कि लोगों को फ़ैसला न करने दिया जाए या फैसला न माना जाए, क्योंकि फिर मैदान जंगी में फैसले होंगे। तो इंसानी जान अल्लाह ताला को इतनी महबूब है और इतनी कीमती है, या इख्तलाल और फसाद से सोसाइटी को पाक रखना इतना ज़्यादा मतलूब है कि उसके लिए इसको गवारा कर लिया जाता है। इसको दुरुस्त करने का तरीका क्या है? इसको दुरुस्त करने का तरीका ये है कि सारी कौम मिलकर भी अगर एक फ़ैसला करे और वो गलत हो तो कुछ खुदा के बंदे उसकी गलती वाजे करते रहें, वो इससे मुतासर ना हो कि कौम ने ये फ़ैसला कर लिया है। नहीं, कौम को दर्दमंदी के साथ पुकारें, उसी तरह के अंबिया जैसे पुकारते हैं, और ये कहें कि तुमने एक गलत फ़ैसला किया है। तो जब कौम का ये शऊर बेहतर होगा जिस पर हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि हमने कायम बिलकिस्त होकर फ़ैसले करने हैं, हमने इंसाफ की बुनियाद पर बात करनी है, हमने अखलाकी उसूलों को किसी हाल में पामाल नहीं होने देना, हमने जो कायदे कानून बनाए हैं उनकी पाबंदी करते हुए आगे बढ़ना है, तो जैसे ही आप ये चीज़ लोगों के अंदर पैदा कर लेंगे तो फिर उनके फ़ैसले बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कि महज ये बात कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने फ़ैसला कर लिया है, वो ज़्यादातर गलत ही होते हैं।
तो बिल्कुल वाजे हो गया शऊर क्या होता है, गांधी साहब से हमने जाना, लेकिन शऊर पैदा कैसे किया जा सकता है सियासी मामलात में, समाजी मामलात में, इस तरीके से मजहबी मामलात में, सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर पूछेंगे। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।